ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70% कमी आई है और आतंकी घटनाओं में भी भारी कमी हुई है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 3 बड़ी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी हथियारबंद संगठनों से औपचारिक बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 75.74 करोड़ मीट्रिक टन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की है। लोकसभा ने केंद्रीय बजट में वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगे पारित कर दी है। सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रसायन और उर्वरक, बिजली, वाणिज्य और उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, सूचना और प्रसारण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगे बिना किसी चर्चा के पारित कर दी हैं। सदन ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों के सिलसिले में कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव नामंजूर कर दिए। भारत ने पिछले महीने की 5 तारीख को अमरीका से अमृतसर वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों के साथ उड़ान में किए गए व्यवहार को लेकर वहां के अधिकारियों के समक्ष गंभीर आपत्ति प्रकट की है। भारत ने प्रत्यर्पित व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को भी बेड़ियों से बांधने का मुद्दा उठाया है। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल लोकसभा में दी। हरियाणा में पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम से राष्ट्रीय स्तर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के 6वें संस्करण का आज शुभारंभ किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुख्य अतिथि होंगे। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, मानसून के पानी का पुनः उपयोग, तालाबों, जल स्रोतों और विलुप्त हो रहे नदी मार्गों का पुनरुद्धार करना है। तमिलनाडु के चेन्नई में आज परिसीमन पर पहली बैठक होगी। डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि और नेता शामिल होंगे। चर्चा के पहले दौर में संघवाद और परिसीमन के मुद्दों पर चर्चा सहित कई एजेंडे होंगे। सूडान की सेना ने खरतूम स्थित राष्ट्रपति भवन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति भवन पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था। सूडान के सूचना मंत्री खालिद अल अशर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब राष्ट्रपति भवन पर सेना का नियंत्रण है। दूसरी ओर विद्रोही सेना का कहना है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेगी। सूडान में 2 वर्ष से जारी गृह युद्ध के दौरान वहां विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। कबड्डी विश्व कप में महिला वर्ग में भारत और मेजबान इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने सेमीफाइनल में हांगकांग को, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने वेल्स को शिकस्त दी। भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। आईपीएल का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच पिछले बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।